एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
सभी सुनने वालों का स्वागत।
आज हम एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, दिलचस्प और थोड़ी चौंकाने वाली किताब पर बात करने वाले।
हाँ, आज बात होगी जेम्स सुरोवियेकी की किताब द विजडम ऑफ क्राउड्स की, हिंदी में कहें तो भीड़ का विवेक,
या शायद बेहतर होगा समूहों की बुद्धिमत्ता, है ना?
हाँ बिल्कुल। और ये किताब ना एक बहुत ही आम धारणा को चैलेंज करती है।
कौन सी धारणा?
यही कि भाई मुश्किल फैसले लेने हो या कुछ सटीक बताना हो तो हमेशा किसी एक्सपर्ट की, किसी ज्ञानी आदमी की या किसी बड़े लीडर की जरूरत पड़ती है।
हाँ, लगता तो यही है।
पर ये किताब कहती है, रुको जरा,
हाँ,
शायद ये हमेशा सच नहीं है।
अच्छा,
बिल्कुल। सुरोवियेकी का तर्क है कि अगर कुछ खास शर्तें पूरी हो जाए ना, तो आम लोगों का एक समूह जिसमें शायद कोई एक्सपर्ट हो भी ना, वो मिलकर भी मतलब आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान और सटीक फैसले ले सकता है।
अरे वाह।
और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। इसके असर हमें बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, अरे भाई अपनी रोज की जिंदगी में भी दिखते हैं।
तो चलिए फिर गोता लगाते हैं इस आइडिया में।
हाँ बिल्कुल।
शुरुआत करते हैं लेखक से, जेम्स सुरोवियेकी। तो ये कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर टाइप नहीं है, मतलब एकेडमिक रिसर्चर नहीं?
नहीं बिल्कुल नहीं। वो एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार, और काफी सालों तक उन्होंने द न्यूयॉर्कर मैगजीन के लिए फाइनेंस पर एक बहुत ही पॉपुलर कॉलम लिखा था, द फाइनेंशियल पेज।
अच्छा, तो पत्रकार वाला नजरिया है।
हाँ, और वही बात उन्हें खास बनाती है। उनकी वो पत्रकार वाली नज़र है ना, वो उन्हें अलग अलग फील्ड्स से, जैसे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, यहाँ तक कि हिस्ट्री, वहाँ से जानकारी लेकर उन्हें आपस में जोड़ने में मदद करती है।
अच्छा,
और वो मुश्किल आइडियाज़ को कहानियों और असल दुनिया के उदाहरणों से बहुत आसान और दिलचस्प बना देते हैं।
हाँ, मैंने सुना उनका कमाल इसी बात में है कि वो कैसे दूर दूर की चीज़ों को जोड़ देते हैं।
बिल्कुल। कहाँ 1906 का वो गांव का पशु मेला, और कहाँ CIA जैसी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी की भाली गलतियाँ,
सही बात है।
कहाँ शेयर बाजार की उठापटक, और कहाँ वो लाइनेक्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हजारों लोग मिलकर बनाते हैं।
अरे हाँ,
वो इन सब के बीच एक कॉमन धागा ढूंढ निकालते हैं, और वो धागा है समूहों की बुद्धिमत्ता।
तो मतलब वो खुद रिसर्च नहीं करते, दूसरों की रिसर्च को एक कहानी में पिरोते हैं।
हाँ कह सकते हैं, वो पहले से मौजूद रिसर्च को एक नए बड़े फ्रेमवर्क में पेश करते हैं बहुत कुशलता से।
ठीक है, तो किताब का मूल विचार क्या है, सेंट्रल आइडिया?
देखिए, किताब इस सोच को तोड़ती है कि भाई समझदारी या सही फैसला लेना, ये किसी एक अकेले इंसान के दिमाग की उपज है। सुरोवियेकी कहते हैं कि हमने ग्रुप्स की, मतलब समूहों की मिलीजुली ताकत को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, कम आका है।
अच्छा,
उनके मुताबिक समूहों के पास अपना एक अलग तरह का ज्ञान होता है, अपनी समझ होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपनी एक कैपेसिटी होती है।
लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या हर भीड़, हर ग्रुप समझदार होता है? हमने तो भीड़ को बेवकूफी करते, भगदड़ मचाते भी देखा है।
बिल्कुल सही सवाल, और यही किताब का असली मर्म है। सुरोवियेकी ये नहीं कहते कि हर भीड़ समझदार है।
तो फिर कब कब समूह बुद्धिमान होते हैं, और कब वो बस एक तर्कहीन भीड़ बन जाते हैं?
हाँ, तो सुरोवियेकी कहते हैं कि समूह की बुद्धिमत्ता अपने आप नहीं आ जाती, इसके लिए चार बहुत जरूरी शर्तें हैं। आप कह सकती हैं चार पिलर हैं।
चार शर्तें हैं, कौन सी?
पहली है विचारों में विविधता, डाइवर्सिटी, मतलब ग्रुप में अलग अलग तरह की सोच, अलग अनुभव, अलग जानकारी वाले लोग होने चाहिए, एक जैसे सोचने वाले नहीं।
डाइवर्सिटी, ठीक है।
दूसरी, सदस्यों की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, मतलब लोग अपनी राय दूसरों के दबाव में आए बिना या दूसरों की देखा देखी किए बिना बनाए, भेड़चाल ना हो।
इंडिपेंडेंस, ओके। तीसरा?
तीसरा है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब ज्ञान और फैसले लेने की ताकत किसी एक सेंटर में ना हो बल्कि फैली हुई हो, ताकि लोग अपनी लोकल नॉलेज का इस्तेमाल कर सकें।
डिसेंट्रलाइजेशन। और चौथा?
और चौथा है एकत्रीकरण का तरीका, एग्रीगेशन मैकेनिज्म, मतलब उन सारे अलग अलग स्वतंत्र विचारों को जमा करके एक सामूहिक फैसले तक पहुंचने का कोई कारगर तरीका होना चाहिए, वोटिंग हो, एवरेज निकालना हो, कुछ भी।
अच्छा, तो विविधता, स्वतंत्रता, विकेंद्रीकरण और एकत्रीकरण, ये चार चीजें।
हाँ, अगर ये चारों मौजूद हैं तो समूह तीन तरह की मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने में कमाल कर सकते हैं।
कौन सी तीन तरह की?
पहली है संज्ञान, कॉग्निशन, मतलब ऐसे सवाल जिनका कोई एक सही जवाब होता है या होगा, जैसे किसी चीज का अनुमान लगाना।
अच्छा।
दूसरी है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, जहां लोगों को बिना सीधी बात के एक दूसरे से तालमेल बिठाना होता है।
कोऑर्डिनेशन।
और तीसरी है सहयोग, कोऑपरेशन, जहां अपने फायदे की सोचने वाले लोगों को भी मिलके काम करने के लिए राजी करना होता है।
ओके, कॉग्निशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ठीक है।
तो किताब की शुरुआत ही एक बड़ी मजेदार कहानी से होती है, शायद आपने सुनी भी हो।
कौन सी? गैल्टन वाले?
हाँ, वही, फ्रांसिस गैल्टन वाली। साल 1906, इंग्लैंड का एक शहर प्लायमाउथ, वहां एक पशु मेला लगा था।
हाँ हाँ सुना है।
तो गैल्टन, जो स्टैटिस्टिक्स के बड़े विद्वान थे, उन्होंने देखा कि मेले में एक बैल के वजन का अंदाजा लगाने का कॉम्पिटिशन चल रहा है।
अच्छा।
करीब 800 लोगों ने हिस्सा लिया। किसान थे, कसाई थे, आम लोग थे, सबने पर्ची पर अपना अंदाजा लिखा। गैल्टन को लगा कि भाई, आम जनता तो यूं ही अंदाजा लगाती है, इनका औसत तो गलत ही होगा।
हाँ, आमतौर पर यही सोचेंगे।
लेकिन जब उन्होंने सारे अंदाजों का औसत, मतलब मीडियन निकाला, तो वो हैरान रह गए।
क्यों, क्या हुआ?
लोगों का औसत अंदाजा था 1197 पाउंड, और उस बैल का असली वजन कटने के बाद तोला गया, वो था 1198 पाउंड।
अरे, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट।
बिल्कुल, भीड़ का औसत अंदाजा लगभग एकदम सही था। और सबसे कमाल की बात, वो मेले में मौजूद किसी भी एक अकेले व्यक्ति के अंदाजे से बेहतर था, चाहे वो कितना भी बड़ा कसाई या किसान एक्सपर्ट क्यों न हो।
ये तो कमाल है, मतलब औसतन हम सब मिलकर ज्यादा समझदार हो सकते हैं, किसी एक एक्सपर्ट से भी ज्यादा।
हाँ, कम से कम संज्ञान यानी कॉग्निशन वाली समस्याओं में तो यही दिखता है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनका एक सही जवाब होता है,
जैसे वो क्लास में जार में कंचे या जेली बीन्स वाला सवाल होता है।
एग्जैक्टली। अगर सभी स्टूडेंट्स के अंदाजों का औसत निकालें, तो वो अक्सर किसी भी एक स्टूडेंट के अंदाजे से ज्यादा सही होता है, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा अंदाजा लगाते हैं, कुछ कम, और गलतियां आपस में कट जाती हैं।
और वो टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति का उदाहरण भी तो फिट बैठता है।
हाँ, ऑडियंस पोल लाइफलाइन।
हाँ, ऑडियंस पोल। आंकड़े कहते हैं कि दर्शकों का मिला जुला जवाब, मतलब जो मेजॉरिटी कहती है, वो 90% से ज्यादा बार सही होता है,
जो कि फोन अ फ्रेंड यानी एक्सपर्ट की राय से कहीं ज्यादा है।
हाँ, जबरदस्त।
एक और सीरियस उदाहरण है 1968 का। अमेरिकी नेवी की एक न्यूक्लियर पनडुब्बी थी, यूएसएस स्कॉर्पियन, वो अटलांटिक महासागर में कहीं खो गई।
ओह, उसे ढूंढना तो बहुत मुश्किल रहा होगा।
हाँ, भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा। तब एक नेवी ऑफिसर थे, जॉन क्रेवन, उन्होंने बड़ा अनोखा तरीका अपनाया।
क्या किया उन्होंने?
उन्होंने सिर्फ नेवी एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाया, उन्होंने पनडुब्बी एक्सपर्ट्स, गणितज्ञ, बचाव कर्मी, यहाँ तक कि सट्टेबाजों को भी शामिल किया।
मतलब एक बहुत विविध ग्रुप बनाया।
अच्छा,
फिर
सबसे कहा कि आप अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगाइए कि पनडुब्बी कहाँ हो सकती है, किस हालत में हो सकती है। फिर उन्होंने इन सारे अलग अलग अंदाजों को एक खास गणितीय तरीके से मिलाया, जिसे बेजियन मेथड्स कहते हैं।
और नतीजा?
नतीजा ये कि पनडुब्बी ठीक उसी इलाके में मिली जहां उस मिले जुले अंदाजे ने इशारा किया था, असल जगह से सिर्फ 220 गज दूर।
कमाल है, ये दिखाता है कि अलग अलग जानकारी को सही तरीके से जोड़ने, मतलब एग्रीगेट करने की ताकत कितनी ज्यादा है।
बिल्कुल। तो ये तो हुई कॉग्निशन की बात। अब दूसरी तरह की समस्या पर आते हैं, समन्वय,
कोऑर्डिनेशन।
हाँ, यहाँ मकसद सही जवाब ढूंढना नहीं है, यहाँ चैलेंज ये है कि लोग बिना आपस में ज्यादा बात किए एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे बैठाते हैं।
जैसे?
जैसे आप किसी भीड़भाड़ वाले फुटपाथ पर चल रहे हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, कोई नियम नहीं है कि दाएं चलो या बाएं, फिर भी लोग ज्यादातर आपस में टकराते नहीं है, वो एक दूसरे की चाल को देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि दूसरा किधर जाएगा, और अपने आप रास्ते बना लेते हैं। ये कोऑर्डिनेशन है।
हाँ, ये तो रोज देखते हैं। या फिर बाजार में किसी चीज की कीमत, वो कैसे तय होती है?
सही पॉइंट। कोई एक आदमी तय नहीं करता, लाखों खरीदने वाले, लाखों बेचने वाले, सब अपनी अपनी जरूरत और समझ से काम करते हैं,
और उससे कीमत निकल आती है।
हाँ, जो एक सिग्नल की तरह काम करती है कि इस चीज की मांग कितनी है, सप्लाई कितनी है, ये लाखों लोगों के बीच का कोऑर्डिनेशन है।
या जैसे कंप्यूटर का QWERTY कीबोर्ड ले लीजिए।
हाँ,
शायद वो टाइपिंग का सबसे तेज तरीका ना हो,
पर क्योंकि सबने उसे अपना लिया है, वो एक स्टैंडर्ड बन गया,
और हम सब उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं।
ठीक है।
और तीसरी श्रेणी थी सहयोग, कोऑपरेशन, ये सबसे मुश्किल लगती है।
हाँ, ये वाकई मुश्किल है। इसमें चैलेंज ये है कि आप लोगों को, जो अक्सर पहले अपना फायदा सोचते हैं, किसी साझे भले के लिए, कॉमन गुड के लिए मिलकर काम करने को कैसे राजी करें।
ये वो ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स वाली बात हो गई?
हाँ बिल्कुल, जहाँ सब लोग साझे संसाधन का इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो सबके लिए खत्म हो जाता है, या फिर वो फ्री राइडर प्रॉब्लम।
हाँ मतलब कुछ लोग ग्रुप के काम का फायदा तो उठाएं पर खुद कोई मेहनत ना करें।
एग्जैक्टली। तो सुरोविये की बताते हैं कि समाज लोगों को टैक्स देने या कानून मानने के लिए कैसे मनाता है। ये सिर्फ सजा का डर नहीं होता।
तो फिर क्या होता है?
इसमें निष्पक्षता मतलब फेयरनेस की भावना बहुत जरूरी है। ये भरोसा कि नियम सबके लिए बराबर है और दूसरे लोग भी अपना हिस्सा दे रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।
अच्छा, ये भरोसे वाली बात।
हाँ।
और एक्सपेरिमेंट्स जैसे अल्टीमेटम गेम दिखाते हैं कि हम इंसानों में न्याय की एक गहरी भावना होती है। हम बेईमानी या अन्याय को सजा देना चाहते हैं, भले ही उसमें हमारा थोड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए।
तो सफल सहयोग के लिए क्या चाहिए? विश्वास, साफ नियम और उन नियमों को लागू करने का सिस्टम।
ठीक है, तो अब वापस उन चार शर्तों पर आते हैं जो ग्रुप को समझदार बनाती हैं। आपने कहा था पहली दो सबसे जरूरी हैं, विविधता और स्वतंत्रता।
हाँ, विविधता डाइवर्सिटी और स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस।
विविधता मतलब सिर्फ अलग अलग जेंडर या जाति के लोग नहीं?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। सोच की विविधता, बैकग्राउंड की विविधता, अनुभव की विविधता, जानकारी की विविधता। अगर किसी ग्रुप में सब लोग एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, एक ही तरह का काम करते हैं, एक ही जैसा सोचते हैं,
तो वो चाहे कितने भी होशियार हों।
हाँ, वो सब एक ही तरह की गलती कर सकते हैं। उसे कहते हैं कलेक्टिव ब्लाइंड स्पॉट, मतलब सामूहिक अंधापन। विविधता नए आइडिया, नए नजरिए लाती है जो शायद किसी एक एक्सपर्ट के पास ना हो।
और स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस, इसका क्या मतलब है यहाँ?
इसका मतलब है कि लोग अपनी राय बनाते समय दूसरों को देखकर अपनी राय ना बदलें, दूसरों के दबाव में ना आएं। अगर सब लोग सिर्फ ये देखने लगें कि अरे वो क्या कह रहा है या लीडर क्या चाहता है और वही कहने लगें,
तो फिर ग्रुप का जो मिला जुला ज्ञान है वो खत्म हो जाता है।
बिल्कुल, भेड़चाल शुरू हो जाती है। सुरोविये की 2003 के इराक युद्ध से पहले CIA की इंटेलिजेंस फेलियर का उदाहरण देते हैं।
हाँ, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा था।
वहाँ क्या हुआ, एक्सपर्ट्स का एक छोटा सा, काफी हद तक एक जैसा सोचने वाला ग्रुप था, उनमें असहमति को दबा दिया गया। विविधता की कमी थी, स्वतंत्रता की कमी थी, सब एक ही नतीजे पर पहुंचना चाहते थे। नतीजा क्या हुआ, एक बहुत गलत और भयानक फैसला।
तो विविधता और स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, बाकी दो क्या थी, विकेंद्रीकरण और
एग्रीगेशन।
विकेंद्रीकरण मतलब पावर का बटा होना।
हाँ, पावर का और जानकारी का भी। फैसला लेने की ताकत किसी एक बॉस या हेडक्वार्टर के पास सिमटी हुई ना हो, बल्कि फैली हुई हो।
इसका क्या फायदा?
फायदा ये कि जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, जिनके पास लोकल नॉलेज है, मतलब वो बारीक जानकारी जो सिर्फ उन्हें अपने छोटे से दायरे में पता है, वो उसका इस्तेमाल कर पाते हैं।
अच्छा।
सेंट्रलाइज सिस्टम अक्सर फेल होते हैं क्योंकि जो टॉप पर बैठा है वो सब कुछ नहीं जान सकता। इसका बेस्ट उदाहरण है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
अरे हाँ, वो तो ओपन सोर्स है।
बिल्कुल, उसे किसी एक कंपनी ने बंद कमरे में नहीं बनाया। दुनिया भर में हजारों प्रोग्रामर अपने अपने कंप्यूटर पर अपनी मर्जी से उसमें अपना कोड जोड़ते हैं। कोई सेंट्रल बॉस नहीं है जो सबको बताए कि क्या करना है। यही विकेंद्रीकरण उसे इतना फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाता है।
समझ गया।
हाँ,
और आखिरी शर्त थी एकत्रीकरण, एग्रीगेशन।
हाँ, अब मान लीजिए आपके पास खूब सारी विविध, स्वतंत्र और विकेंद्रीकृत जानकारी आ गई अलग अलग लोगों से। लेकिन अगर उसे इकट्ठा करके सबको मिलाकर एक नतीजे पर पहुंचने का कोई तरीका ही ना हो, तो वो सारी जानकारी बेकार है। वे
सही बात है, कोई मैकेनिज्म चाहिए।
हाँ, वो तरीका वोटिंग हो सकता है जैसे चुनाव में होता है, या औसत निकालना हो सकता है जैसे गैल्टन ने किया था, या बाजार की कीमत हो सकती है जो मांग और सप्लाई को एकत्र करती है।
गूगल का सर्च इंजन भी तो यही करता है ना।
हाँ
बिल्कुल सही पकड़ा। गूगल का पेज रैंक एल्गोरिथम क्या करता है?
हाँ,
वो इंटरनेट पर मौजूद अरबों वेब पेजों के आपसी लिंक्स को एक तरह का वोट मानता है।
अच्छा।
और फिर उन सारे वोटों को एकत्र करके तय करता है कि कौन सा पेज ज्यादा महत्वपूर्ण या भरोसेमंद है।
हाँ।
ये एग्रीगेशन का एक जबरदस्त उदाहरण है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, समूह हमेशा सही नहीं होते।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
वे भयानक गलतियां भी कर सकते हैं।
हाँ, और ऐसा तब होता है जब ये चार शर्तें, विविधता, स्वतंत्रता, विकेंद्रीकरण, एकत्रीकरण, इनमें से कोई एक या ज्यादा गायब हो जाती है।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे शेयर बाजार के बुलबुले, फाइनेंशियल बबल्स। याद है 90s के दशक का डॉट कॉम बबल?
हाँ हाँ बिल्कुल।
उसमें क्या हुआ था, स्वतंत्रता खत्म हो गई थी, लोग अपनी रिसर्च या समझ पर भरोसा करने के बजाय ये देखने लगे थे कि दूसरे लोग कौन से टेक स्टॉक खरीद रहे हैं
और सब वही खरीदने लगे।
हाँ, आंख बंद करके। ये इन्फॉर्मेशन कास्केड बन गया, एक के पीछे एक। नतीजा, कीमतें आसमान पर पहुंच गईं, जिनका कंपनी की असल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं था। और फिर धड़ाम, बबल फूट गया।
और वो स्पेस शटल वाली दुर्घटना है, चैलेंजर और कोलंबिया।
हाँ, वो छोटे बंद समूहों में ग्रुप थिंक का बहुत ही दुखद उदाहरण है।
ग्रुप थिंक मतलब?
ग्रुप थिंक मतलब वो सिचुएशन जब किसी ग्रुप में एकता बनाए रखने और लीडर को खुश करने का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग अपनी असहमति, अपनी चिंताएं या कोई बुरी खबर बताने से डरने लगते हैं।
अच्छा।
चैलेंजर 1986 के मामले में कुछ इंजीनियरों ने लॉन्च से ठीक पहले रॉकेट के एक हिस्से ओ रिंग्स की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई थी, खासकर ठंडे मौसम में।
लेकिन
उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। मीटिंग में उन पर दबाव डाला गया कि वो अपनी आपत्ति वापस ले लें। ग्रुप बहुत सजातीय था, ज्यादातर नासा के एक जैसे सोचने वाले लोग। उसमें हायरार्की बहुत थी, बॉस की बात माननी थी और स्वतंत्रता की भारी कमी थी। नतीजा, लॉन्च के 73 सेकंड बाद ही शटल में विस्फोट हो गया।
बहुत दुखद। और कोलंबिया 2003 में भी कुछ ऐसा ही हुआ?
हाँ, वहाँ भी लॉन्च के समय एक टुकड़ा टूटकर शटल के विंग्स से टकराया था। कुछ इंजीनियरों ने इस डैमेज को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन मैनेजमेंट ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। जानकारी ऊपर तक ठीक से पहुंची नहीं, या पहुंची तो उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर से वही ग्रुप थिंग, जानकारी का सही से एग्रीगेट न होना। नतीजा, वापसी के समय शटल तबाह हो गया।
तो किताब का निचोड़ क्या है, फाइनल मैसेज?
निचोड़ ये है कि देखो भाई, समूहों की बुद्धिमत्ता कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमेशा काम करेगी। ये एक शक्तिशाली औजार है, एक पोटेंशियल है,
लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है।
हाँ, असली चुनौती ये नहीं है कि हम सबसे होशियार लीडर को कैसे ढूंढें, असली चुनौती ये है कि हम ऐसे सिस्टम, ऐसी प्रक्रियाएं कैसे बनाएं जो समूह की मिलीजुली अक्ल का, उस कलेक्टिव विजडम का सही और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकें।
तो इस पूरी बातचीत से हमारे सुनने वालों के लिए क्या खास बातें निकल कर आती हैं, टेक अवेज क्या है?
मेरे लिए तो सबसे पहली और शायद सबसे क्रांतिकारी बात यह है, सही प्रक्रिया विशेषज्ञता से ज्यादा जरूरी हो सकती है।
प्रोसेस कैन ट्रम्प एक्सपर्टीज।
मतलब
ये कि अगर आपके पास अलग अलग सोच वाले लोगों का ग्रुप है और आप उनके विचारों को सही ढंग से मिलाने का तरीका जानते हैं, तो उनका मिला जुला फैसला अक्सर किसी अकेले सुपर एक्सपर्ट से भी बेहतर हो सकता है। ये सोचना ही अपने आप में बड़ा है।
हाँ, ये बात तो है। दूसरी बात
वो चार स्तंभ, विविधता, स्वतंत्रता, विकेंद्रीकरण और एकीकरण, ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल शर्तें हैं।
अगर इनमें से एक भी कमजोर हुई तो ग्रुप की समझदारी खतरे में पड़ सकती है। जैसे सोचिए, ऑफिस की मीटिंग में अगर सब बॉस की हाँ में हाँ मिलाने लगे
तो स्वतंत्रता गई।
हाँ, तो फिर अच्छे फैसले की उम्मीद कम ही है।
ठीक है, तीसरा पॉइंट।
तीसरा अहम सबक है सूचना और प्रभाव का फर्क,
इन्फॉर्मेशन वर्सेस इन्फ्लुएंस,
सूचना बनाम प्रभाव। हाँ, समझदार ग्रुप जानकारी के लेन देन पर पनपते हैं, लोग अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मूर्ख ग्रुप सामाजिक दबाव या नकल इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाते हैं। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लोग बिना डरे अपनी असली जानकारी या राय दे सकें, न कि सिर्फ वो जो दूसरों को पसंद आए या जो पॉलिटिकली करेक्ट हो।
ये बहुत जरूरी बात है। चौथा,
केंद्रीयकृत व्यवस्थाओं की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स। किताब बार बार दिखाती है कि जब सारी ताकत और सारे फैसले एक जगह टॉप पर जमा हो जाते हैं तो गलतियां होने का खतरा बढ़ जाता है,
क्योंकि टॉप वाला सब कुछ नहीं जान सकता।
एग्जैक्टली।
विकेंद्रीकृत सिस्टम्स जहां जानकारी और ताकत बंटी हुई होती है, वो ज्यादा लचीले, ज्यादा रेजिलिएंट और अक्सर ज्यादा समझदार साबित होते हैं।
सोचिए ना, भारत जैसा इतना बड़ा और विविध देश।
हाँ।
क्या कोई एक व्यक्ति या एक छोटा ग्रुप दिल्ली में बैठकर हर गांव, हर कस्बे की जरूरतें और सच्चाइयां समझ सकता है? शायद नहीं। विकेंद्रीकरण जरूरी है।
बिल्कुल। पांचवां,
ये समझना कि हर समस्या एक जैसी नहीं होती। वो तीन तरह की समस्याएं याद है?
हाँ, कॉग्निशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन।
हाँ, ये समझना जरूरी है कि ग्रुप अलग अलग सिचुएशन में कैसे काम करते हैं। और छठा पॉइंट, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया।
ओके।
समझदारी का मतलब हमेशा आम सहमति नहीं होता। विजडम इजंट कंसेंसस।
अरे ये तो उल्टी बात लगती है। हमें तो लगता है अच्छा फैसला वो है जिस पर सब राजी हों।
हाँ, हमें यही सिखाया जाता है, पर सुरवियेकी कहते हैं नहीं, कई बार बेहतरीन नतीजे असहमति से, बहस से, विचारों के टकराव से निकलते हैं।
लेकिन बशर्ते?
बशर्ते उन्हें ठीक से एकत्र करने का, एग्रीगेट करने का कोई तरीका हो। जबरदस्ती की एकता या सबको चुप कराकर बनाई गई सहमति अक्सर ग्रुप को बेवकूफी की ओर ले जाती है। हेल्दी डिसएग्रीमेंट जरूरी है।
ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और सातवां?
और सातवां एक तरह से विशेषज्ञता का लोकतंत्रीकरण।
डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एक्सपर्टीज।
लोकतंत्रीकरण मतलब ये विचार कि आम लोगों की मिली जुली राय, उनका कलेक्टिव जजमेंट स्थापित विशेषज्ञों या सत्ता को चुनौती दे सकता है। ये ज्ञान को कुछ खास लोगों की मुट्ठी से निकालकर ज्यादा लोगों तक पहुंचाने जैसा है। थोड़ा रेडिकल है, पर है जरूरी।
किताब में कुछ ऐसी लाइनें भी होंगी जो इन आइडियाज को अच्छे से पकड़ती हैं।
हाँ बिल्कुल हैं। जैसे वो गैल्टन वाले बैल के प्रयोग के बाद जो बात निकलती है,
क्या
कुछ इस तरह की, सही परिस्थितियों में समूह उल्लेखनीय रूप से बुद्धिमान होते हैं और अक्सर उनमें मौजूद सबसे चतुर लोगों से भी ज्यादा चतुर होते हैं।
मतलब ग्रुप इंटेलिजेंस व्यक्ति को हरा सकती है, पर वो सही परिस्थितियां चाहिए। वो चार शर्तें।
बिल्कुल। और एक और लाइन है विविधता और स्वतंत्रता पर।
विविधता और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सामूहिक निर्णय असहमति और प्रतिस्पर्धा के उत्पाद होते हैं, न कि आम सहमति या समझौते के।
यानी बहस और टकराव अच्छे हैं अगर सही तरीके से हो।
हाँ, उनसे ही समझदारी पैदा होती है, न कि जबरदस्ती की एकता से। और ये वाली लाइन देखिए, थोड़ी विरोधाभासी लगती है। विरोधाभासी रूप से किसी समूह के स्मार्ट होने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसमें मौजूद प्रत्येक व्यक्ति जितना संभव हो सके स्वतंत्र रूप से सोचे और कार्य करें।
है ना, पैराडॉक्सिकल। मतलब ग्रुप की ताकत अलग अलग व्यक्तियों की अपनी आजाद सोच बनाए रखने में है, न कि झुंड में शामिल हो जाने में। इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस लीड्स टू कलेक्टिव विजडम।
कमाल है। और वो कोलंबिया स्पेस शटल वाली बात, वो मुझे बहुत सोचने पे मजबूर करती है।
कौन सी?
वो के समस्या ये नहीं थी कि जानकारी मौजूद नहीं थी। एक मायने में संगठन सच जानता था, लेकिन समग्र रूप से संगठन नहीं जानता था।
ओहो, हाँ, ये बहुत पावरफुल है।
मतलब जानकारी तो थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं, पर वो सही जगह तक पहुंची नहीं, उसे जोड़ा नहीं गया, वो कलेक्टिव नॉलेज बनी नहीं पाई। ये दिखाता है कि सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, उसे ऊपर लाने और इस्तेमाल करने का सिस्टम कितना जरूरी है।
बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन सब आइडियाज का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में कैसे इस्तेमाल करें।
हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं?
सोचिए, ऑफिस में क्या सारे बड़े फैसले सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही लेता है?
अक्सर तो यही होता है।
तो क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कर्मचारियों के एक बड़े और विविध समूह से राय ली जा सके। जैसे कुछ कंपनियां इंटरनल प्रेडिक्शन मार्केट बनाती हैं।
प्रेडिक्शन मार्केट, वो क्या होता है?
उसमें कर्मचारी गुमनाम तरीके से शर्त लगा सकते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट चलेगा या नहीं, या कोई प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा होगा या नहीं। अक्सर इन मार्केट के नतीजे बहुत सटीक होते हैं।
अच्छा, और मीटिंग्स में ग्रुप थिंक से कैसे बचें?
एक तरीका है ब्रेन राइटिंग। मतलब मीटिंग में किसी मुद्दे पर बोलने से पहले सबको 5 मिनट दें कि वो अपने विचार चुपचाप कागज पर लिख लें।
अच्छा, इससे क्या होगा?
इससे लोगों की पहली स्वतंत्र सोच सामने आ जाती है, इससे पहले कि वो दूसरों से प्रभावित हों या बॉस की राय सुने। फिर उन विचारों पर चर्चा हो सकती है।
ये तो अच्छा आइडिया है। और बिजनेस के अलावा?
फाइनेंस में निवेश करते समय बाजार की कलेक्टिव विजडम जैसे इंडेक्स फंड पर भरोसा करें, लेकिन साथ ही उस भीड़ से सावधान रहें जो बिना सोचे समझे एक ही तरफ भाग रही हो। मतलब बबल को पहचानना सीखें जब स्वतंत्रता खत्म हो जाती है।
और राजनीति या गवर्नेंस में?
कुछ देशों में मुश्किल पॉलिसी इश्यूज पर सलाह देने के लिए आम नागरिकों की डाइवर्स सभाएं, सिटीजन असेंबलीज बनाई जा रही हैं। रैंडमली चुने गए लोग जिन्हें एक्सपर्ट्स जानकारी देते हैं और फिर वो मिलकर सिफारिशें देते हैं।
ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
हाँ, या इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपनी टीमों में कॉग्निटिव डाइवर्सिटी यानी अलग अलग तरह से सोचने वाले लोग शामिल करने चाहिए ताकि वो ग्रुप थिंग से बच सकें।
और टेक्नोलॉजी में तो उसके उदाहरण दिखते ही हैं।
बिल्कुल। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे लिनक्स या विकिपीडिया, या वेबसाइटों पर होने वाली AB टेस्टिंग जहाँ यूजर्स का कलेक्टिव बिहेवियर बताता है कि कौन सा डिज़ाइन बेहतर है। ये सब विजडम ऑफ क्राउड्स के ही रूप है।
और क्या हम इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं?
क्यों नहीं। मान लीजिए आपको कोई बड़ा फैसला लेना है, करियर बदलना है या घर खरीदना है, तो सिर्फ अपने जैसे सोचने वाले दो चार दोस्तों से ही नहीं, बल्कि अलग अलग बैकग्राउंड, अलग उम्र, अलग प्रोफेशन के कई लोगों से सलाह लें, उनकी स्वतंत्र राय सुने
और फिर उन सबको मिलाकर अपना फैसला करें।
हाँ, हर किसी की राय का वजन उसकी विशेषज्ञता या अनुभव के हिसाब से तय करें, लेकिन सुने सबकी। इससे आपको शायद ज्यादा बैलेंस्ड और मजबूत फैसला लेने में मदद मिलेगी।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि हमें शायद अपना फोकस बदलने की जरूरत है।
कैसा फोकस?
हमें हमेशा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजने के बजाय सबसे बुद्धिमान सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। समझदारी किसी एक जीनियस के दिमाग की बपौती नहीं है, ये एक अच्छे से डिजाइन किए गए ग्रुप से, एक सिस्टम से उभरने वाला गुण है।
बिल्कुल सही कहा। और मेरे लिए वो चार शर्तें विविधता, स्वतंत्रता, विकेंद्रीकरण, एकत्रीकरण, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट की तरह है।
टूल किट कैसे?
हम इन्हें इस्तेमाल करके डायग्नोस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कोई टीम, कोई कंपनी, कोई समाज क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा।
हाँ।
कहाँ कमी है? क्या विविधता कम है? क्या लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे? क्या जानकारी नीचे ही दबी रह जाती है?
हाँ। और फिर उसे सुधारने के तरीके सोच सकते हैं।
एग्जैक्टली। और ये एक उम्मीद भी जगाता है ना कि अगर हम सही सिस्टम बनाएं तो हम मिलके बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं को ज्यादा समझदारी से हल कर सकते हैं।
सच में एक बहुत ही पॉजिटिव और सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है ये।
हाँ बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।